Kumaris presents Empowering Medical Minds.
ओम शांति। जी हाँ, ओम शांति का मतलब ही है कि किस प्रकार से मैं आपके द्वारा और आपके साथ मिलकर या अपनी स्थिति के द्वारा आपकी मदद से इस माहौल को खूबसूरत और शांतिमय बना सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो सारी बात होगी उस सफर की, अशांति से शांति की तरफ, दुख से सुख की तरफ, अपने अंदर खलबली से अपने अंदर स्टेबिलिटी या समावेश को कर पाने की जर्नी, और उसी के साथ साथ मेरे द्वारा आसपास के लोगों में, आसपास की जगह में किस तरह से एक स्टेबिलिटी आ सके, एक उल्लास आ सके, एक खुशी आ सके और एक शांति आ सके। आज के समय में जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक ऐसी स्थिति है जो जिसके बारे में लोग सोचते हैं, चाहते हैं, विश करते हैं, लेकिन उसे पाना शायद संभव नहीं है। और कई कारण है उसके, क्योंकि आज के समय में अगर हम अपने आसपास देखें तो जिस तरह का अशांति का माहौल है, और वो अशांति जो है वो अशांति कुछ हद तक तो बाहरी चीजों में है भी, आपस में जिस तरह से बातचीत होती है या समाज में जिस तरह की बातें होती हैं या इधर उधर से कुछ खबरें सुनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अशांति हमारे अंदर होती है। क्योंकि बाहरी चीजों में भी अगर कोई अशांति का कारण है तो जब तक मेरा मन उसको अपने अंदर नहीं लेता, मेरा मन ये नहीं कहता कि हाँ आज मैं और मेरे आसपास वाले और पूरा समाज अशांत है, तब तक वो अशांति हमें महसूस नहीं होती। अगर हम ये भी देखें कि क्या पिछले कुछ दिनों में इस चीज के बारे में बदलाव आया है, तो हाँ सिर्फ देखने में नहीं आया, लेकिन जो आंकड़े उभर के सामने आ रहे हैं और वो काफी वर्ष से एक जिसको ट्रेंड कहते हैं, एक शिफ्ट कहते हैं, वो हुई है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और हर वर्ष ऐसा देखने में आया है कि ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों में जागरूकता आई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको जांचने के जो तरीके हैं वो बेहतर हुए हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि कई तरह की ऐसी जगहें हैं जहां पे कि अशांति या मन में जो लोगों की अशांति है, चाहे बाहरी रूप से उतनी ना भी हो, हालांकि कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे कि वॉर्स चल रही हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे कि पूरे समाज में किसी ना किसी तरह की अराजकता है, ऐसी जगहें हैं जहां पे कि टेररिज्म बहुत ज्यादा है, या कई तरह की इकोनॉमिक जो बदलाव हैं और उन बदलावों के साथ साथ जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, यानी वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है और वो लोग जिनके पास नहीं है, या वो लोग जिनके पास खाने को ना हो, या वो लोग जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आ रही हो, या वो समाज जो कि ट्रांजिशन में हो रहा हो, तो ऐसे समाज में आमतौर पर पाया जाता है कि मन से जुड़ी जो समस्याएं हैं और वो समस्याएं धीरे धीरे जब इकट्ठी होती रहती हैं तो वो जो मन की समस्याएं हैं और वो मन की बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं, तो वो सारे समय के साथ साथ बढ़ रही हैं। और ये जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड सिर्फ एक जगह पर, एक समाज में या एक देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में है, कुछ जगहों पर कम, कुछ जगहों पर ज्यादा। कुछ ऐसे जो कारण, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से देखें तो एक पूरे विश्व को एक महामारी ने एक तरह से ग्रसित कर लिया, ऐसी सिचुएशन अगर देखें तो 8 से 100 वर्ष पहले जो कि स्पेनिश फ्लू जिसको कहा जाता है उस समय में हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में इस तरह की सिचुएशन आई, और उसके बाद छोटे मोटे चेंजेस तो आते रहे। लेकिन आज अगर हम देखें, आंकड़ों को देखें, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उस कगार पे हैं जहां पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वो मेंटल हेल्थ वीक और मेंटल हेल्थ डे मनाने की बात कर रहा है। 10th of October हर साल मेंटल हेल्थ डे के रूप में बनाया जाता है, और ये मनाने का कारण ये है कि मानसिक समस्याओं से जुड़ी हुई जितने भी बातें हैं उनके बारे में खुल के समाज में बात हो, क्योंकि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी चपेट में कोई भी आ सकता है। मैं, आप, हमारे परिवार, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, जो हायर ब्रैकेट ऑफ जिनको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं, और समाज का कोई भी हिस्सा हो, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, या कई बार रिलीजियस लीडर्स हों, और डॉक्टर्स हों, या वो लोग जो कि रोजमर्रा की जिंदगी जिनको कि एक नॉर्मल व्यक्ति कहा जाता है वो जी रहे हों, लेकिन सतह के नीचे कई तरह की ऐसी बातें हैं जो चलती हैं। तो इस वर्ष 2020 में जो विश्व मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर को, उसके बारे में बात होगी कि किस तरह से हम सबको आगे बढ़कर हर जगह अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा हर व्यक्ति के लिए, और वो हमें पूरे रूप से हर किसी को मुहैया करानी पड़ेंगी, उपलब्ध करानी पड़ेंगी, नहीं तो ये जो समस्या है ये ना सिर्फ बढ़ेगी लेकिन इसकी वजह से जितनी भी और चीजें हैं जिंदगी में उनका सुख, उनका लाभ हम कभी भी नहीं ले पाएंगे, समाज के रूप में, परिवार के रूप में या व्यक्तिगत रूप में। इसी के साथ जुड़ी दो खास बातें हैं। हर समय, हर समाज में, भारत उससे अछूता नहीं है, जहां पर कि ये देखा गया है कि करीबन 15% से लोग ऐसे हैं जिनको कि आज इस समय किसी न किसी रूप में प्रोफेशनल मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जरूरत है, यानी आज उन्हें जरूरत है किसी डॉक्टर को, काउंसलर को, प्रोफेशनल को मिलने की, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जिंदगी पे बहुत असर है, उनके परिवार पे बहुत असर है, उनके काम पे बहुत असर है, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर है, उनके जो एक दूसरों के साथ रिश्ते हैं उस पर असर है, और उनकी जो दिनचर्या है रोज की, और उनका जो खान पान है, नींद है, सेहत है, उन सब पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दीज आर कॉल्ड मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स। और अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हम करीबन 18 से 20 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या है उन लोगों की जिनको आज किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है, और उनके लिए हमें रिसोर्स तो पूरे तरीके से देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। और आमतौर पर जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो लोग रिसोर्सेज को सिर्फ पैसे से तोलते हैं। अगर पैसा आ भी जाए, हालांकि एक बहुत दुखद बात है कि भारत में जो हेल्थ के ऊपर पूरा खर्चा है, जीडीपी का जिसको कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का, वो बहुत कम है। ऐसा माना गया है कि करीबन 5 से 10% ये खर्चा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा तभी वो समाज सिर्फ ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं करेगा लेकिन ज्यादा खुश भी होगा। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो समाज खुश हो, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उनका इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस जो है वो काफी ज्यादा है। और उसके कई कारण हैं, कल्चरल कारण खासतौर पे, या सोचने का ढंग एक व्यक्ति का या उस कल्चर में पूरे समाज का, और जिंदगी के बारे में रवैया और जिंदगी से कुछ सीखें वो बहुत सालों साल से, सदियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को कौन कौन व्यक्ति अपने लिए और अपनों के लिए और समाज के लिए वो शुरू कर सकता है। लेकिन उससे पहले, क्या रिसोर्सेज सिर्फ पैसा है? नहीं, रिसोर्सेज का मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो एक चीज को ठीक करने में मदद कर सके वो व्यक्ति वहां खड़ा हो, और कुछ प्रोफेशनल्स जो कि इस चीज को बेहतर करते हैं वो उसके लिए खड़े हैं, तैयार हैं और पूरे समाज के हर हिस्से में मौजूद हैं। ये आंकड़े हमारे देश के लिए कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की बात करें तो करीबन 6,000 साइकियाट्रिस्ट हैं, और अगर हम पश्चिमी देशों के मुकाबले में देखें या जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से देखें तो ये करीबन 10 गुना होने चाहिए। लेकिन इतने कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के, और अगर हम ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर्स या साइकेट्रिक नर्सेज या डॉक्टर्स की ही बात करें तो अगेन वो बहुत कम है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि अभी हाल में ही, हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और जो दूसरी पैथीज हैं जिनको आयुष पैथीज कहते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये जो हैं, योगा, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन जहां पर माइंड से रिलेटेड बातें आती हैं उनके लिए या तो इन्हें अपनाया नहीं जाता या वो पूरी तरह से समाज में अवेलेबल नहीं है। तो आज जरूरत हो जाती है कि समाज के हर हिस्से को एक दूसरे का हाथ थामकर मदद करनी पड़ेगी, ताकि हम सिर्फ समाज से नहीं अपने घरों को भी इस चीज से बचा ले सकें। क्योंकि अगर हम 15% ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको कि आज मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की जरूरत है, और अगर हम थोड़े से मॉडरेट, यानी वो लोग जिनको कि प्रॉब्लम तो है लेकिन इतनी गंभीर नहीं है, तो ये आंकड़े करीबन 25% हो जाते हैं। और ड्रग अब्यूज, टबैको, अल्कोहल वो अलग हैं। तो अगर 25% है, यानी करीबन हर घर में एक व्यक्ति जिसको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज हम हर कोई इस चीज में मेरा रोल क्या है, मैं कैसे इसमें मदद कर सकता हूं, इसके बारे में बात करें। अगर हम देखें कि ऐसे क्या समस्याएं हैं, ये डिटेल में नहीं जाने का समय है, लेकिन जो मोटे मोटे आंकड़े बताते हैं वो है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी बार बार एक ही विचार का चलते रहना, डिप्रेशन यानी उदासीनता की बीमारी, सिर्फ उदासी नहीं, उदासीनता की बीमारी वो जो है, और एंजाइटी यानी दुश्चिंता जिसमें कि हमेशा उस व्यक्ति को घबराहट रहती है और कुछ उसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो ये तीन मोटी मोटी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, जिनको हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, और बाकी जिनको कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशियाज, डिलीरियम्स, ये कुछ और ऐसी समस्याएं, और बच्चों में करीबन 10% बच्चे जिनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, यानी जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज बोलते हैं, यानी जिसके की अंदर डिसलेक्सियाज जिसको कहा जाता है वो आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये इकट्ठी हो के अगर हम पूछना शुरू करें आज की डेट में, और यही बात कुछ समय पहले जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन रहा है कि अब सारे डॉक्टर्स जो ट्रेन हों वो आने वाले समय में मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको पहचान सकें उनके बारे में कुछ कर सकें और समाज में इस तरह की प्रॉब्लम्स को हर लेवल पर डॉक्टर्स के हर तरह के बैकग्राउंड के डॉक्टर्स के वो इसमें मदद ला सके। मैं उससे एक कदम आगे जाके ये भी कहना चाहूंगा कि मन जो है वो हम सबके पास है, पूरे विश्व को हम अपने मन के द्वारा ही देखते हैं और एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग अपने मन की इमोशंस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कोई आशावाद में अगर विश्वास रखता है या आशावादी है तो वो व्यक्ति उसी सिचुएशन के बारे में कहेगा कि अरे इससे तो मैं पहले भी डील कर चुका हूं, और अगर ये है तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वो उसके बारे में सकारात्मक सोच रख के और उससे डील कैसे करना है उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि आशाहीन है या उस समय उस स्थिति में है जहां पे कि उसको लगता है कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं है या वो उस परिस्थिति में डर जाता है, तो वो ये सोच के कि कुछ हो ही नहीं सकता, और कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो हम खासतौर पे देखते हैं कि वो लोग जो कि जिनके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, पोजीशन है, लेकिन कुछ देर के लिए अगर मन में नेगेटिव विचार आते हैं या उनकी पर्सनालिटी वैसी होती है तो उस कारण से उनको लगता है कि फ्यूचर कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी एक तरह से इंटरप्रिटेशन है। तो अगर हम उस इंटरप्रिटेशन को सकारात्मक कर सके, उसके कुछ तरीके भी हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन अगर हम उस तरीके से विश्व को देखते हैं तो हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ और उनसे जो भावनाएं इकट्ठी होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनको लेकर उस मुश्किल से भी जूझ सकते हैं, विजयी हो सकते हैं और एक तरह से लीडर बन सकते हैं कि किस तरह से जीरो सिचुएशन में भी हम हीरो का पार्ट कैसे अदा कर सकते हैं। तो आज जरूरत हो जाती है हर व्यक्ति को, चाहे वो मेडिकल फील्ड से है या नहीं, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, जो कि पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़ा बदलाव लोगों की जिंदगी में ला सकते हैं, लेकिन अगर हम में से कोई भी इन सारी बैकग्राउंड्स में नहीं भी है तो हम अपने और अपने आसपास वालों की जिंदगी में बदलाव जरूर ला सकते हैं अपने मन को एक सकारात्मक दिशा देकर, और उसी के साथ ही हम इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कि जो आज के समय में उत्पन्न हुआ है, कहा जाता है कि कोरोना वायरस का जो क्राइसिस अभी चल रहा है वो एक ऐसा क्राइसिस है जो विश्व ने कभी नहीं देखा, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, न्यूज में, इंटरनेट के द्वारा जो एक से दूसरे में जाती है उसको कहा जाता है सेकेंड वेव ऑफ इन्फोडेमिक, पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस फॉलोड बाय इन्फोडेमिक ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉलोड बाय अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जिसको कि हमने अब देखना शुरू कर दिया है, जिसमें कि लोगों का रिस्पांस एक सहमा सा, एक डरा सा, एक फ्यूचर के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में, रिश्तों के बारे में वो है, और हम आज ही अगर उसे पहचान कर उसे कम करना शुरू कर देते हैं तो हम वो रिसोर्स बन सकते हैं जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल को पैदा कर सकता है। तो आज के समय में जरूरत हो जाती है कि किस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेटजीज को अपनाएं जिसके द्वारा हम धीरे धीरे एक शिफ्ट लाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये समझना जरूरी हो जाएगा कि अगर हम एक इंडिविजुअल के लेवल पर देखते हैं तो तीन डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन है मेरी बॉडी की, दूसरी डायमेंशन है मेरी आत्मा की, सोल कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, और तीसरी डायमेंशन है जो इन दोनों के बीच में समावेश करती है, मन की। तो इन मन एक तरह से इंटरप्रेटर है जो कि आत्मा की शक्तियों का, आत्मा के गुणों का, आत्मा की पावर्स जो रोजमर्रा में कभी कभी हम महसूस भी करते हैं लेकिन आमतौर पर उस पर ध्यान नहीं देते या उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, तो वो किस तरह से हम अपने मन में महसूस करके उसको बढ़ा सकते हैं। तो वो जो एक इंटरफेस है शरीर मन और आत्मा का, तीन डायमेंशंस का, और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल ये जो थ्री डायमेंशनल कह लीजिए हमारा एक अस्तित्व है उसका इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी अपने आप में एक संपूर्ण है, लेकिन जब दोनों लोगों के बीच में इंटरेक्शंस होता है और वो बदलता रहता है हर जगह पर, परिवार में हम अलग तरह के रोल्स निभाते हैं और फिर जब हम काम पे जाते हैं वहां पे हम और तरह के रोल्स निभाते हैं, समाज में अगर किसी और जगह पे होते हैं तो और तरह के रोल निभाते हैं, तो वो जो एक डायमेंशन ऑफ इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप्स का इंटरेक्शन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कई बार और खास तौर पे अभी भी अगर देखें जहाँ पे कि लोगों को बहुत लंबे समय तक अपने घरों में रहना पड़ रहा है या दूसरों से अगर हम बातचीत करते भी हैं तो हम टू डायमेंशंस में हैं, वीडियो के जरिए या इंटरनेट के जरिए अगर हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक फीलिंग ऑफ थ्री डायमेंशंस वो नहीं आती, और अगर सिर्फ फोन पे बात करते हैं तो वो नो डायमेंशन है क्योंकि हम देख नहीं पाते। जो पांच सेंसेस हैं जिनकी हमको बहुत एक आदत बनी हुई है लेकिन अब हम पांच सेंसेस से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम सिर्फ बोलने और देखने की जो हमारी सेंसेस हैं उनको काम में लाते हैं और बाकी जो हैं वो धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए एक तरीके से जो हमारे सोचने का, अपने आसपास के समाज को, एनवायरनमेंट को महसूस करने का एक अलग तरीके से, मैं तो कहूँगा मौका भी मिला है, हालांकि कई लोगों को इसकी वजह से एक बहुत अपने अंदर ही कष्ट भी हो रहा है, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इस तरीके से जिंदगी को पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, और किस तरह से हम इसको एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपने अंदर चिंतन का और उस चिंतन के द्वारा चिंता को मिटाने का, उस चिंतन के द्वारा दूसरों की मदद करने का और उस चिंतन के द्वारा मेरा अपना पर्पस क्या है, इस प्लैनेट का पर्पस क्या है, ह्यूमैनिटी का क्या पर्पस है, इसको समझ के बदलने का। यहां पर अलग अलग लोग इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न उठ के ये आता है, हम जब भी चाहें तो अपने एग्जाम्पल के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा या हमारी जो अपने प्रति या दूसरों के प्रति कंट्रीब्यूशन है उसके द्वारा चीजों को बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, जिसको पैरामेडिकल सर्विसेज कहते हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो वार्ड बॉयज हैं या साफ सफाई वाले लोग हैं, उनकी भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका रहती है। और अगर हम बाहर समाज में जाएं तो जो आशा वर्कर्स हैं या कम्युनिटी वर्कर्स हैं वो एक बहुत अहम भूमिका है जो है वो निभाते हैं, और वही एक तरह से मैसेंजर्स हैं जो कि माइंड की इश्यूज से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक स्टिग्मा लगा रहता है, कलंक सा महसूस करते हैं लोग, वो जो एक सबसे बड़ी बाधा है, जिस बाधा की वजह से लोग अपनी मदद नहीं कर पाते या मदद के लिए किसी को कह नहीं पाते, पुकार नहीं पाते, और अगर मदद मिल भी रही है तब भी उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो स्टिग्मा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि लोगों को लगता है कि शायद लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये कहेंगे कि ये तो अपने माइंड पे नहीं कंट्रोल कर पाता तो दूसरों पर या काम पर क्या कंट्रोल करेगा। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी समझने की बात है कि अगर आपका माइंड सशक्त है, कंट्रोल में है, तभी आप बाहर किसी भी चीज का पूरी तरीके से फायदा भी उठा पाएंगे, उसको बेहतर भी कर पाएंगे और उसमें नए नए तरीके क्रिएटिवली सोच भी पाएंगे। तो माइंड जो है, जिसको कि हम बहुत कम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि हालांकि हमारे पास जितना पोटेंशियल है उसका शायद 2-3% ही हम यूज कर पाते हैं, और अगर हम उसको धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दें तो उसकी अथाह पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये बात अगर हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर्स जो कि अभी पढ़े हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो समझना शुरू कर दें कि हर इंटरेक्शन में, और खास तौर पे अगर हम फिजिकल इलनेसेस देखें जिनमें कि कुछ तरह की बीमारियां जिनको साइकोसोमेटिक कहा जाता है, लेकिन असल में हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, क्योंकि अपने आप को ठीक करने में सबसे बड़ा रोल मेरा अपना है, मैं हीलर हूं अपने लिए। बाहरी रूप से अगर कोई दवाई है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, किसी भी तरह का इलाज है, तो वो इलाज मेरे थ्रू, मेरे मन के थ्रू ही मेरे शरीर पर काम करता है। मेरे मन के खास तौर पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है और उसके लिए मुझे कोई दवाइयां दी जाती हैं या काउंसलिंग की जाती है, तो उसको अपनाना और अपने ऊपर लगाना वो मेरा अपना काम है, और उसे मैं जितना भी मुस्तैदी से करूंगा, जितने भी कमिटमेंट से करूंगा, वही बाद में जाके मुझे काम आएगा और वही डिसाइड करेगा कि मैं अपने आप को कितना ठीक कर पाया, ना सिर्फ उस समय पर हमेशा के लिए, ताकि आगे जाके भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए या मैं अपनी स्वस्थिति में भी थोड़ा सा डावाडोल होता हूं तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकूं। तो इसके बारे में नॉलेज लेना आज के समय में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर मान लीजिए आप फॉर्मली स्टूडेंट नहीं भी हैं, लेकिन आपका अपने ऊपर बहुत ध्यान है, अपने को बेहतर करने के लिए बहुत ध्यान है, और आप हमेशा ये देखते रहते हैं कि किस तरह से मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स को अपना सकूं जो कि मैं लगा सकूं, अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सकूं, और फिर मेरे बाद मैं दूसरों को उनके तरफ ले जा सकूं, तो आप भी एक तरीके से माइंड स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, अपने मन के भी, और दूसरों को जब आपने हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करनी शुरू की तो उस समय में भी। अगर हम किसी ऐसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में हैं जहां पे कि हम किसी तरह के प्रोग्राम्स को समाज में लाते हैं, चाहे हम ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे हम किसी तरह के पॉलिसी मेकर्स हों, या हम अगर कोई बिजनेस पर्सन है और मेरे नीचे बहुत लोग काम करते हैं, या अगर मैं एक ऑफिस में भी काम करता हूं तो जो मेरे आसपास के लोग हैं वहां पर, अगर मैं समाज सेवक हूं, अगर मैं रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर हम इस मुद्दे पर फोकस करें और सकारात्मक रूप से अपने माइंड को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसकी पावर्स को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में खुद भी जानो और दूसरों को भी जानकर उसके बारे में मदद कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं, डायरेक्शन दे सकूं। वहां पर पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि मेरा ध्यान अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर हर समय रहे। मेरी जो जर्नी है मैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं इसके ऊपर रहे। क्या मैं प्रोग्रेस जो कर रहा हूं वो सिर्फ बाहरी रूप से है, भौतिक रूप से है, पैसे के ऊपर है, किसी बड़े मान शान उसके ऊपर है, बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस उसके ऊपर है, या मैं ग्रो कितना किया हूं, मैंने किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को स्टेबल रखना सीख लिया है, किस तरह से अगर कोई परिस्थिति उठती है तो मैं उसको लांग जाता हूं। अगर इन चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा और फोकस करना शुरू कर दूं तो मैं ना सिर्फ अपने मन को बेहतर करता हूं, साथ ही साथ वो जो आंकड़े हैं, जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस के आंकड़े हैं, जिसका कि अनफॉर्चुनेटली कई बार जो लास्ट एक ट्रेजेडी होती है सुसाइड उसके बारे में है, उनको कम कर सकता हूं। और दूसरी डायमेंशन जो कि वेलबींग की डायमेंशन है, हेल्थ की डायमेंशन है, उसमें मैं किस तरह से योगदान दे सकता हूं जिससे कि मैं खुद खुश रहकर, मैं खुद सुखी शांत रहकर, बिना जलसी किए हुए, बिना कंपटीशन किए हुए, मैं एक ऐसा बीज अपने अंदर डाल के और वो दूसरों में भी अपने एग्जाम्पल के द्वारा दे सकता हूं, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम ये चीजें धीरे धीरे स्ट्रेस और डिस्ट्रेस और डिस ईज से पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं अपने साथ साथ और फिर बाकी लोगों को भी अपने एग्जाम्पल के द्वारा या उनपे ऊपर काम करके या सेवा करके या ऐसे इनिशिएटिव्स में जुड़ के मैं ना सिर्फ अपने को बट पूरे प्लेनेट को, समाज के, परिवार के साथ साथ एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता हूं। और इसमें जो कई और मुद्दे आज के समय में हमारे प्लेनेट को तंग कर रहे हैं, चाहे कि वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो अलग अलग तरह के फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूजेस हैं, या वॉर्स हैं, वो भी सब हमारे मन में ही शुरू होती हैं, वो भी हमारे एक इंडिविजुअल या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कमी आने की वजह से शुरू होती हैं। और अगर उन्हें भी हम एक सकारात्मक दिशा देनी शुरू कर देते हैं और वो चीजें भी जैसे जैसे हम अंदर स्टेबल होते हैं तो हमें उस समय में फिर अशांति भी अच्छी नहीं लगती, किसी का दुख भी अच्छा नहीं लगता, कोई अगर असामान्य सिचुएशन है वो भी अच्छी नहीं लगती, तो हम स्वतः ही अपने आप को वहां से हटाकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो वो सिर्फ मन का स्टेबल होना एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, समाज के और देश के और विश्व के और प्रकृति के लेवल पर भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। इंसिडेंटली अगर हम इनके बारे में आज डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इसकी इन्वेस्टमेंट पैसे से नहीं है, इसकी इन्वेस्टमेंट हमारी वृत्ति से यानी इंटेंशन से है, तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करने की सोच लेते हैं कि हाँ मैं अपना कुछ समय, अपनी एनर्जीज, जानकारी खुद के लिए भी लूंगा, दूसरों के साथ भी शेयर करूंगा, तो वो धीरे धीरे एक शिफ्ट होना शुरू होता है, और वो शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस है। वो जो शिफ्ट है उसके लिए सबसे पहली चीज हो जाती है अवेयरनेस की, नॉलेज की, और जब वो नॉलेज आनी शुरू होती है कि मैं अपने में शिफ्ट क्यों करूं, कैसे करूं और किस पर्पस के लिए करूं, जिसके लिए कि राजयोगा में एज टॉट बाय द ब्रह्म कुमारीज एक बहुत सुंदर बात है कि मैं कौन, मैं आत्मा, मैं किस लिए, ताकि अपने में इम्प्रूवमेंट ला सकूं, मेरा लक्ष्य क्या, जैसे देवी देवता थे जो कि संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी और एक निराकारी स्थिति, एक स्टेज जहां पे कि आप बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर की स्थिति को और अपने अंदर की पावर्स को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, और वो नॉलेज बहुत एक सुदृढ़ रूप से, एक बहुत प्लान्ड रूप से और एक बहुत खूबसूरत रूप से, जो कि नॉलेज ऑफ राजयोगा है, जिसके की बारे में आप जब भी चाहें तो किसी भी सेंटर से उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और आज के समय में तो एक तरह से जब ये ऑनलाइन इतनी सर्विसेज शुरू हुई हैं, तो उनकी वजह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इस चीज का ज्ञान जो है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो जब हम वो चीज करते हैं तो सेकंड स्टेज आती है कि उन पावर्स को मैं बढ़ाऊं कैसे, और उनको बढ़ाने के लिए जो एक कांस्टेंट धारणा जिसको बोलते हैं, जिसमें कि वो जो नॉलेज पाई है उसको रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे एक आज मुझे बदलाव लाना है, चाहे एक अपनी स्थिति को प्लान्ड तरीके से, परिस्थिति कुछ भी हो उसमें कैसे पूरी तरह से मुझे स्टेबल रहना है, या अगर कोई और व्यक्ति मेरे आसपास थोड़ा सा परेशान है तो मैं अपनी शान में रहकर, और मेरी शान है एक शांत, एक लाइट, एक पावरफुल, एक नॉलेजफुल और एक पीसफुल आत्मिक स्थिति का, तो वो अपनी पावर को मैं दूसरे तक कैसे ला सकूं। तो इन सब चीजों को अपने अंदर प्रैक्टिकल रूप से अपनाना, वो हो जाता है धारणा। और जब हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत बल की जरूरत होती है। हम अपने मन को अगर शांत कर सके, अपने विचारों को ज्यादा स्पीड पे ना भागने दें, तो उनकी पावर्स जो इकट्ठी होती हैं, और उस स्थिति से जब हम परिस्थितियों को रिएक्ट करते हैं और उस स्थिति को बनाने के लिए मैं प्रैक्टिसेस करता हूं, चाहे उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहें या मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कहें। और मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ कुछ देर की मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, वो सारा दिन सोचने का एक जो ढंग है उसको कहा जाता है। तो जब मैं वो एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल जीता हूँ तो उसकी वजह से जो मुझ में पावर्स संचित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो पावर्स को मैं जब अपनाता हूँ और दूसरे मुझ में वो चेंजेस देखते हैं, तो अपने आप उनकी सेवा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी उस स्थिति में कैसे स्टेबल रहना है इसको सीखते हैं, और उसी के साथ साथ कैसे वो इस स्थिति को अपना सके उसके बारे में सोचने लगते हैं। और वहां पर जब मैं दूसरों की मदद करना शुरू करता हूँ, शेयर करना शुरू करता हूँ, चाहे वो मेरे गुणों की शेयर हो, चाहे उस परिस्थिति को ज्यादा ना खराब करने का हो, चाहे बाहरी कुछ भी हो रहा हो लेकिन मैं स्टेबल हूँ, चाहे कोई बहुत डिफिकल्ट इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए हट के उसमें अपने आप को एक दृष्टा या विटनेस के रूप में महसूस करता हूँ, या बहुत ज्यादा किसी चीज में फंसने की बजाय मैं अपने आप को एक ट्रस्टी महसूस करता हूँ, तो वो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा मैं सिर्फ अपनी ही नहीं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ दूसरों की, खास तौर पे जिनके साथ मैं रहता हूँ, काम करता हूँ, वो सेवा होनी शुरू हो जाती है। जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उस कंप्लीशन ऑफ साइकिल से अपने आप ही मेरे और मेरे आसपास वालों के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, और फिर वो बूंद बूंद इकट्ठी होके एक से कुछ और, कुछ और, एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी सोसाइटी में, फिर एक बड़ी जगह पर, और फिर दूसरों में, व्हाट इज कॉल्ड एज बाय अ रिपल इफेक्ट, यानी जैसे जब एक हम छोटा सा कंकड़ भी एक पानी में डालते हैं तो वो धीरे धीरे जो उसकी लहरें हैं, उन लहरों की वजह से वो दूर तक जाती हैं। और आज के समय में जबकि सोशल मीडिया एक पॉजिटिव तरीके से भी अगर लें, तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं कि कैसे डिफिकल्ट पीरियड में भी कुछ लोगों ने परिस्थिति के बावजूद भी हीरो बनकर, चाहे वो वॉरियर्स ऑफ कोरोना हो, चाहे वो लोग जिन्होंने दूसरों की मदद की, चाहे वो लोग जिन्होंने की संवेदना के द्वारा, अपनी एम्पथी के द्वारा दूसरों की मदद की, वो होना शुरू हो जाता है और फिर वहां से एक सुखद समाज की संरचना होनी शुरू हो जाती है और वो जो संरचना है वो फिर आगे जाके पूरी एक शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड को रखने का एक पोटेंशियल रखती है। आज हमें जरूरत है रोल मॉडल्स की, भाषण की नहीं, लेकिन जो अपनी साइलेंट भाषा से, अपने उदाहरण से, बिना कुछ कहे दूसरों में इंस्पिरेशन ला सकते हैं। और उसके लिए उम्र की, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपकी क्या पोजीशन है उसकी जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी पोजीशन में है जहां पे एक बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा, लेकिन कोई भी व्यक्ति, और खास तौर पे आज के समय में जबकि नेगेटिव फॉरवर्ड्स, नेगेटिव शेयर्स सोशल मीडिया पर पूरे विश्व में एक जगह से दूसरी जगह पर, जिनको कि हम वर्ल्ड बीइंग अ ग्लोबल विलेज आज के समय में कहा जाता है, बट व्हेन यू थिंक लोकल एंड एक्ट ग्लोबल, जिसका मतलब है कि हम क्या सोचकर अपनी जगह पर और अगर निस्वार्थ रूप से खास तौर पे काम करते हैं तो वो धीरे धीरे शेयर होना शुरू हो जाता, दूसरों को उसमें वैल्यू दिखती है और फिर वो उस वैल्यू बेस्ड लिविंग को बाकियों के साथ शेयर करके, आपके एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करके, और दूसरे भी उसको अपनाना शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या क्या ऐसी तरीके हैं जिनके द्वारा ये चीज कर सके। थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए उसके बारे में बात करते हैं। इट हैज टू बी अ डेली प्रैक्टिस, इट हैज टू बी अ परसिस्टेंट प्रैक्टिस, इट हैज टू हैव पेशेंस, इट हैज टू बी गोल ओरिएंटेड, इट इज अ चॉइस। यानी अगर हम रोज करें, लगातार करें, एक दिशा देकर करें और एक उसको एक इंडिविजुअल चॉइस के रूप में प्लान्ड तरीके से करें, तब वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। वहां पर पहली चीज की जो इररिलेवेंट, अनइम्पॉर्टेंट, वेस्टफुल और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो मेरे पुराने हैं, चाहे वो दूसरे लोगों के हैं, वो आज के समय में मेरे को कोई मदद नहीं करने वाले, जो मैंने उनसे सीखना था मैं सीख चुका, अब मुझे वहां से आगे बढ़कर किस तरीके से नए एक्सपीरियंसेस, जो कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस दे पाए, उन पे फोकस करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए वहां पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे विचार वेस्ट ना जाए, मेरा समय वेस्ट ना जाए, मेरे इंटरेक्शंस नेगेटिव ना हो। अगर मैं किसी को सुख दे सकता हूं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो कम से कम दुख ना दो। ये जब हम हर समय कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं, माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं, हर तरह की बात को अपने मन में चर्न करते हैं और अगर वो ठीक नहीं लगी तो उसे कैसे बदलना है उसके बारे में एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान पे चलना शुरू हो जाते हैं, जब वो होता है, डेली बेसिस पे होता है, तो हम वो बदलाव को धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करते हैं और वो बदलाव महसूस होता है कि हमारा मन जो है वो अब शांत होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीजों से घबराता नहीं है, कोई परिस्थिति आती भी है तो मैं जल्दी डगमगाता नहीं हूं और मैं किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी सकारात्मक रूप से उसके साथ डील कर सकूं, ये समझते हुए कि टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। वो लोग जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव भावनाएं रखते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी पार कर लेते हैं। तो जब वो एक प्रोसेस शुरू होता है पुरानी चीजों की फाइलों को बंद करने का, नई खोलने का, अपने ऊपर रोज ध्यान देकर अपने आप को मेडिटेशन में, मेडिटेटेड लाइफस्टाइल के द्वारा एक हायर पावर से, अपनी हाईएस्ट पावर से कनेक्ट करने का, तो जब वो एक रोज का प्रोसेस शुरू होता है और फिर वो चीजें जो मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, वो चीजें जहां पे कि मुझे लगता है कि इससे समाज को हानि होगी या मुझे जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं उस डायरेक्शन से भटक जाऊंगा, तो हम उन चीजों को फिर फुल स्टॉप लगाना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो किस तरीके से जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, और खास तौर पे अगर हम हीलिंग प्रोफेशंस में हैं या हम हमारे द्वारा हम दूसरों को डायरेक्शन दे सकते हैं, तो हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि राजयोग में भी बहुत खूबसूरती से कहे जाते हैं और वो साइंटिफिकली भी आजकल धीरे धीरे उन पे शोध के बाद ऐसा देखने में आया है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग जो हैं वो हमारे मन को भी शांत रखते हैं और जो एक एक्सटर्नल क्राइसिस होते हैं उनमें भी हमें डील करने का पूरा मौका देते हैं। वो प्रिंसिपल्स हैं एम्पथी के यानी संवेदना के, काइंडनेस के यानी दया भाव के, एल्ट्रुइज्म के यानी दूसरों की मदद करने के, ग्रैटिट्यूड के यानी शुक्राने के, किस तरीके से हर समय मेरे पास जरूर डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा है या ऐसा अच्छा हुआ होगा जिसको कि मैं अपने ध्यान में रख के उसको अपने साथ में अपने एक्सपीरियंसेस में रख के धीरे धीरे जो मिस्ट्रस्ट के, जो जेलसी के, जो कंपटीशन माइंडलेस है उसके एक्सपीरियंसेस को पीछे छोड़ते जाते हैं, पैक करते जाते हैं, जिप करते जाते हैं, डिलीट करते जाते हैं। तो जब वैसा होता है तो मैं एक नए तरह की कॉन्शियसनेस लेकर अपने मन के द्वारा अपने शरीर को भी हील करना शुरू कर देता हूं और मेरे शांति के, सुख के, खुशी के, बीइंग लाइट के, बीइंग नॉलेज के और एक आंतरिक शक्ति के जो एक्सपीरियंसेस हैं, गुण हैं, वो स्वतः ही मेरी जिंदगी में दिखने शुरू हो जाते हैं और वहां से साइकिल ऑफ हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। जहां पे ऑफ कोर्स इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस में जरूरत अगर है किसी व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह की, दवाइयों की, काउंसलिंग की, थेरेपी की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होता तब तक हम जितने भी सेल्फ हेल्प के मेथड है या सोल पे काम करने के मेथड है उनका पूरा लाभ नहीं ले सकते, तो वो भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बदलाव जो है हमारे जिंदगी में वो इन चीजों के द्वारा आते हैं। और वहां पे अगर पूरा परिवार चलता है, अगर एक पूरी एक जगह है जहां पे कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, खासतौर पे अगर काम करने की जगह है और वो सारे इन प्रिंसिपल्स को, इन थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस को मान के चलते हैं, तो उस जगह की मेंटल हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाती है और वहां से एग्जाम्पल्स होने शुरू हो जाते हैं, सीडलिंग्स जिनको कहते हैं, जो बाकी जगह पे भी फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए विजुलाइज करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऊपर और फिर अपने द्वारा दूसरों के साथ मिलकर इस चीज को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं। और इस तरह के थॉट्स और इस तरह की प्रैक्टिसेस अगर हम रोज अपने साथ करते हैं, लगातार करते हैं, अगर हो सके तो एक ही समय पर, एक ही जगह पर करते हैं और फिर चलते फिरते इन चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कोई कहीं पे लिख के रख लें या कहीं नोट कर लें या अपने फोन में या लैपटॉप पे या काम करने की जगह पर अपने आप को थोड़ी थोड़ी इन चीजों के बारे में याद दिलाना शुरू करें, तो सारा दिन बीच बीच में जब हम उनको याद करते रहते हैं तो ये फिर हमारी जिंदगी का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड का बन जाता है और उस ऑपरेटिव सिस्टम के बदलने के कारण हमारी जो आउटपुट है वो बदल जाती है, जो हमारी खुशी है वो बदल जाती है। तो आइए कुछ देर के लिए अपने साथ समय बिताते हैं। इसके लिए अपना पूरा ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर दूसरे थॉट से समेट कर अपने शरीर और फिर शरीर के भान से भी दूर अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंटरैक्शंस पर फोकस करते हैं। जो चीज मुझे तंग कर रही है उसे छोड़ दें। कोई पास्ट की बातें, कोई व्यक्ति, कोई एक्सपीरियंस, कोई इमोशन, कुछ भी जिसकी वजह से मैं अपने आप को बोझिल महसूस करता हूं, थका महसूस करता हूं, उदास महसूस करता हूं, चिंता महसूस करता हूं, डर महसूस करता हूं, उन्हें छोड़ दें। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक थॉट है और क्योंकि बहुत बार मेरे मन में आए हैं इसलिए बार बार उनका मेरे ऊपर असर होता है। लेकिन अगर मैं समझ लूं कि इस समय वो मुझ पर किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं डाल सकते और मैं इस समय आज पर, अब पर, इस क्षण पर, इस जगह पर पूरी तरह से फोकस करता हूं, माइंडफुल होता हूं, वो विचार जो सुखद हैं उन्हें आने देता, जो विचार तंग कर रहे हैं उन्हें भी आने देता हूं, लेकिन उनसे न डरता हूं, न भागता हूं, न फोकस करता हूं। तो धीरे धीरे वो विचार कम होने शुरू हो जाते हैं और दूसरे विचार जो सकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस पैदा करते हैं वो मेरे मन में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मुझे उन पे फोकस करके उन्हें बढ़ाकर अच्छा महसूस होता है और वो मुझे एक नई दिशा देता है और उन पर फोकस करके मैं अपने पूरे शरीर को, मन की सभी वृत्तियों को, विचारों को, भावनाओं को पॉजिटिव और एलिवेटेड महसूस करता हूं। इससे मैं अपने पूरे शरीर में तो लाइट, माइट, हीलिंग एंड हैप्पीनेस के साथ साथ अपने मन की शक्तियों को भी सकारात्मक महसूस करता हूं। मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा हुआ महसूस करता हूं। मैं अपने सारे दिन की थकावट को पीछे छोड़ पाता हूं। मैं सारे नेगेटिव इंटरैक्शंस को डिफोकस कर पाता हूं। मैं अपने मन को किस तरह से हर व्यक्ति के साथ, हर स्थिति के साथ पॉजिटिव डील करना है, इसके बारे में फोकस कर पाता हूं। आने वाले समय में कैसे, जब कोई परिस्थिति आए तो उससे डरने या घबराने या परेशान होने की बजाय उन कारणों के निवारणों की तरफ बहुत जल्दी डिसीजन ले पाता। मैं कंफ्यूजन से क्लैरिटी को धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा के डिसीजंस में महसूस करने लगता, और जैसे जैसे ये होता है तो मेरे पुराने स्ट्रेसेस, मेरे पुरानी टेंशंस, मेरी नेगेटिव फीलिंग्स, मेरी नेगेटिव मेमोरीज बैकग्राउंड में जानी शुरू हो जाती। मैं आज की इस सकारात्मक जिंदगी पर, इन पॉजिटिव और एलिवेटेड इंटेंशंस पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर विजय पाकर एक नई दिशा अपनी जिंदगी को दे पाता हूं। और फिर मेरे द्वारा, मेरी एम्पथी के द्वारा, मेरी काइंडनेस के द्वारा, मेरे ग्रेटिट्यूड के द्वारा, मेरे दूसरे लोगों की मदद करने की इंटेंशंस के द्वारा, मेरे आसपास का माहौल पॉजिटिवली बदलना शुरू हो जाता है। और उस बदलाव से बूंद बूंद करके मेरे आसपास का सारा माहौल ठीक होना शुरू हो जाता है। लोगों को भी मेरे साथ रहने, मेरे पास रहने में अच्छा महसूस होता है। और हमारा रोजमर्रा का लेन देन प्योर और हायर पर्पस के लिए हो जाता है, जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, जलसे, कंपटीशन अपने आप ही छूटने शुरू हो जाते हैं। मैं हर किसी के पॉजिटिव रोल को, पॉजिटिव गुणों को, पॉजिटिव इंटेंशंस को देख पाता हूं। उनके जो ऐसी बातें हैं जिनसे पहले मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता था, अब धीरे धीरे एक्सेप्ट करके और फिर चेंज कैसे करना है, कभी प्यार से कहकर या कभी अपने एग्जाम्पल के द्वारा उनमें भी बदलाव ला पाता। और फिर मेरे द्वारा मेरों के लिए, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उन अपनों के लिए, और फिर सब मिलके एक नए समाज की रचना करना शुरू कर देते हैं, जहां पे हर व्यक्ति एक डिफरेंट हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप करके किस तरह से प्रकृति को, समाज को, देश को, फैमिली को और इंडिविजुअल को एक नई दिशा देकर एक नए समाज की एक शांत सुखद खुशनुमा समाज की परिकल्पना करकर उसको आज अपने सामने महसूस कर सकता हूं। और जब हम सब मिलकर अपने आप को और समाज को नॉलेज, धारणा, योग यानी मेडिटेशन और सेवा के द्वारा बदलाव लाते हैं, तो फिर पूरा विश्व ही नए रूप में दिखता है। और फिर मन से जुड़ी तकलीफें और मन से जुड़ी बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं और एक नया समाज हम सब के लिए सुख की अनुभूति कराने वाला उभरने लगता है। इन विचारों को रोज जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, खास तौर से मुश्किल परिस्थितियों में अपने साथ रिपीट करके उस समय के लिए उस स्थिति से ऊपर उठ के हम अपने आप को और जिस जगह पर हैं उस जगह को और दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं और इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस से अपने को और अपनों को, समाज को और पूरे विश्व को बाहर निकाल सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031।
आइए एक मिनट मेडिटेट करें। बाहर की दुनिया से न्यारे हो, भीतर की दुनिया को देखें।